भगवान वर्धमान महावीर स्वामी पर्यंत चौबीसों धर्म तीर्थ शासन नायकों को, 24 जिनेन्द्रों को, 24 देवादिदेवों को प्रणाम। द्वादशांग श्रुत देवता स्वरूपा भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के धर्म धुरंधर आचार्य, परम श्रद्धेय चारित्र चक्रवर्ती, ज्ञानी ध्यानी तपस्वी शांति सागर मुनिराज को नमोस्तु। दीक्षा शिक्षा गुरुवर आचार्य विद्यासागर महाराज को नमोस्तु। पांच प्रातिहार्यों का विवरण इस व्याख्यान माला में संपन्न हुआ था। अशोक वृक्ष, सूर्य पुष्प वृष्टि, फिर चामर, 64 चामर, उसके उपरांत भगवान का प्रभा मंडल जिसको भामंडल कहते हैं, आभा मंडल भी कहते हैं, इसके उपरांत दुंदुभि वाद्य, इन पांच प्रातिहार्यों का, इनको महाप्रातिहार्य भी कहते हैं। प्रातिहार्य सामान्य केवलियों के भी हो सकते हैं, लेकिन ये तीन छत्र 64 चंवर अन्यत्र नहीं होते, तीर्थंकरों के ही होते हैं। जैसे बाहुबली भगवान थे, भरत स्वामी थे, इनके एक छत्र प्रातिहार्य था, तीन छत्र प्रातिहार्य नहीं थे। तीन छत्र प्रातिहार्य तीर्थंकर के होते। तो अब छत्रत्रय का वर्णन प्रारंभ हो रहा है। त्रिभुवन पतिता लांछन मिंदुत्रय तुल्य मतुल मुक्ता जालम छत्रत्रयंच सुबृहद वैडूर्य विकृत दंडमधिक मनोज्ञम। भगवान तीनों जगत के स्वामी हैं, तीनों जगत के ईश है, त्रिभुवन पति हैं, त्रिलोकी नाथ है, उसका चिन्ह ये तीन छत्र है। और कैसा है? इंदुत्रय तुल्यम, तीन चंद्रमाओं जैसा है। छत्र कभी भी पीले नहीं होते, नियमतः चंद्रमा जैसे सफेद होते हैं। अतुल मुक्ता जालम, और जिसके तुलना नहीं की जा सकती, ऐसी मुक्ता यानी मोतियों के एक विशिष्ट जाल से, उसकी एक संरचना से, तोरण के समान उसमें मोती की झालरें लटक रही हों, ऐसे वो छत्रों की किनारियां होती है। छत्र ऐसे हैं गोल, लेकिन उनकी किनारियों पर ऐसे मोतियों के झालर लटकते हैं। और एक ऐसी जानकारी इसमें आ रही है जो संभवतः वर्तमान काल में नवीन हो आपके लिए, वो ये है कि सुबृहद वैडूर्य विकृत दंडम। ये तीन छत्र जो होते हैं वो डंडे में लगे होते हैं। ये श्रृंखला से लटके नहीं होते। आगम में कहीं भी आप देखेंगे अभी जैसे ये सामने अपने श्लोक खुला हुआ है, पूज्यपाद आचार्य द्वारा विरचित है नंदीश्वर भक्ति में, तो प्रातिहार्यों का वर्णन चल रहा है। तो ये 20वां काव्य है प्रातिहार्यों, जिनेन्द्र के वर्णन में 34 अतिशयों का वर्णन करने वाले काव्य थे, फिर अष्ट प्रातिहार्यों का वर्णन चल रहा था। तो इसमें जो 20 क्रमांक काव्य है, इसमें लिखा है कि वो तीन छत्रों का डंडा कैसा होता है, इससे क्या स्पष्ट हुआ कि छत्रों का डंडा होता है, ये तो सिद्ध हो गया। तो ये स्पष्ट है कि छत्र डंडे में लगे रहते हैं, लटके नहीं होते। इसलिए जैसे अभी आपने इशारा किया कि यहां मुक्ता फल जैसी संरचना दिख रही है, तो फिर हमने यहां का चित्रण नहीं किया क्योंकि यहां ऊपर से लटक रहे हैं वो। और इसमें जो लिखा हुआ है वो छत्रों के अंदर बीचों बीच वो डंडा है, इसमें जो वर्णन है उसके अंतर्गत वो बीचों बीच एक डंडा है। सुबृहत वैडूर विकलृप्त दंडम, बृहंत चितानि वैडूर्याणि च तैर विकलृप्त। वो डंडा ऐसा होता है जिसमें तीनों छत्र आ जाते हैं और सबसे ऊपर वाले छत्र के ऊपर कुछ नहीं होता, हो ही नहीं सकता, वो तो चरम सीमा है, पराकाष्ठा है, उसके ऊपर कुछ कैसे हो सकता है। और वो जो डंडा है उस पर सुबृहत अत्यंत बड़े बड़े वैडूर्य मणि लगे रहते हैं, डंडे में वो रत्न जड़े होते हैं। वैडूर्य मणि की विशेषता पद्म पुराण में आई है, रविशेन आचार्य महाराज ने लिखा है कि जब राजा कीर्तिधर दीक्षा लेने के लिए तत्पर हुए तो उन्होंने अपने पुत्र सुकौशल को अयोध्या का राजभार सौंप दिया और स्वयं दीक्षा के लिए तत्पर हो गए। तो तब मंत्री जनों ने उनसे कहा कि आपके पूर्वजों ने जो राज्य भार दिया था वो अपने पुत्रों को प्रशिक्षित करके, व्यवस्थित करके, सिंहासन पर स्थापित करके दीक्षा भार ग्रहण किया था। अभी सुकौशल जो आपका पुत्र है वो आपकी महारानी सहदेवी से उत्पन्न हुआ है, वो बालक है, शिशु है, तब भी वैराग्य तो वैराग्य होता है। राजा ने उसके सिर पर ऐसे तिलक लगा दिया, बोले कि मैंने इसको राजा घोषित कर दिया है, अब मैं राजा नहीं हूँ और इसकी देखरेख मंत्रिमंडल करेगा, और जब तक ये योग्य न हो जाए तब तक आप अयोध्या को सुरक्षित रखेंगे। फिर जब सुकौशल बड़े हो गए, योग्य हो गए, फिर वो सिंहासन पर आरूढ़ हो गए, राजा बन गए। तो उस समय मंत्रियों ने उनको समझाने के लिए, राजा कीर्तिधर को समझाने के लिए ऐसे बुझते हुए अंगार उनके सामने प्रस्तुत किए, बोले कि देखो इसमें कोई तेज नहीं है, और आप अगर हमें छोड़ के चले जाएंगे तो हम में कोई तेज नहीं रह जाएगा, और आप जब तक हो तब तक हम में उत्साह और तेज है। देखिए आप वैडूर्य मणि के समान हो। और उन्होंने वो बिजते हुए अंगारों के बीच वैडूर्य मणि डाल दिया तो उस सारे अंगार प्रकाशमान हो गए। तो वैडूर्य मणि में ये विशेषता होती है कि वो बुझते हुए अंगारों में अगर उसको रख दिया जाए तो सारे अंगार प्रकाशमान हो जाते हैं। तो वो वैडूर्य मणि समावसरण में भगवान के तीन छत्रों के वो जो डंडा होता है उसमें लगे रहते हैं। तो अभी ये जानकारियां आपके पास पहुंच रही है आगम से, ये आपका सौभाग्य है। फिर इसके बाद क्या करना, ये आपका पुरुषार्थ होगा। इससे अधिक कोई संकेत देने की आवश्यकता नहीं है, इसके बाद आपकी मर्जी। क्योंकि यहाँ तो जिनवाणी माता केवल बताती है कि क्या योग्य है क्या अयोग्य है। अब योग्य में प्रवृत्ति करना और अयोग्य से निवृत्त होना, ये जिनवाणी को जो माँ मानता है उस पुत्र के पुत्रत्व की परीक्षा है। वो कितना आज्ञाकारी है वो उसके ऊपर निर्भर करता है। आपको वैसा छत्र अगर देखना हो तो हम बताने का प्रयत्न करते हैं। उसका एक चित्र है, छाया चित्र है। ये कर्नाटक में एक प्रसिद्ध स्थान है श्रवणबेलगोल, और श्रवणबेलगोल में जो मठ मंदिर है उस मठ मंदिर में ये तीन छत्र इस प्रकार लगे हुए हैं। ऊपर कुछ भी नहीं है, हम केवल छत्र को थोड़ा सा बड़ा करके आपके सामने दिखाते हैं। डंडे पर लगे हुए छत्र कितने सुंदर लगते हैं आप स्वयं निर्णय करना। तो ये धर्म में एडजस्टमेंट वाला काम नहीं होना, यहाँ पर परफेक्ट काम होना। अपनी जानकारी में अगर आगम की बात है तो फिर, और अपनी क्षमता है तो फिर उस पर अमल कर ही लेना। बाकी बहानेबाजी से तो फिर वो जो चीज टल गई सो टल गई, अभी नहीं सो कभी नहीं, ये स्थिति होती है। अब कर्नाटक में एक और मंदिर था, वहां पर भी हमें ऐसा ही चित्र मिला था। आप स्वयं जो पाषाण घटित प्रतिमाएं हैं उनको देखिएगा, किसी भी पुराने क्षेत्र पर जाकर के जो भी पाषाण की प्रतिमाएं हैं उनको देखिएगा, वो परिकर रहित होंगी ही नहीं, परिकर रहित सिद्ध प्रतिमा होती है, प्रातिहार्य रहित सिद्ध प्रतिमा होती है, चिन्ह रहित सिद्ध प्रतिमा होती है, केश और नख रहित सिद्ध प्रतिमा होती है। अरहंत प्रतिमा में ये सब वैभव नियमतः होता है, क्योंकि अरहंत कभी वैभव रहित नहीं हो सकते। उनने वो वैभव त्यागा तो बड़ा वैभव उनको मिल गया। ये संकेत है जगत के जीवों के लिए कि त्याग करोगे तो पाओगे, पकड़ोगे तो सब चला जाएगा, कुछ नहीं बचने वाला। इसमें दोनों प्रकार के छत्र हैं। एक तो आप भगवान के शीश के ऊपर देखिएगा, जो पाषाण में बने हुए उसी एक शिलाखंड में बने हुए छत्र हैं, बिल्कुल वैसे ही छत्र हैं। और ये ऊपर डंडे में लगे हुए जो छत्र हैं ये भी देख लीजिए, उनके ऊपर कुछ भी नहीं है, ये छत्र हैं, दिख रहे हैं। ये भगवान के सिर के ऊपर वाले छत्र हैं, थोड़ा सा डार्क है, लेकिन ये ऊपर के जो छत्र हैं डंडे में पीछे से लगे हुए हैं वो अलग से ही दिख रहे हैं। ये देखो, तो अपन भगवान की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, अपन सब लोग मानते हैं कि भगवान आठ प्रातिहार्य के धारी हैं, सारे तीर्थंकर। एक श्वेतांबर विद्वान ने लिखा था कि भक्तांबर में 44 काव्य हैं, और साथ में उन्होंने ये तर्क दिया कि सभी तीर्थंकरों के 8 प्रातिहार्य हो, ऐसा जरूरी थोड़ी है। तब फिर हमारा उनके लिए प्रतिप्रश्न था कि यदि आप ऐसा मानेंगे कि सभी तीर्थंकरों के 8 प्रातिहार्य अनिवार्यतः नहीं होते, तो फिर आपके भक्तामर पाठ में जो 44 काव्य हैं उनमें दिव्य ध्वनि नहीं है, दिव्य ध्वनि प्रातिहार्य का वर्णन नहीं है, दुंदुभि प्रातिहार्य का वर्णन नहीं है, पुष्प वृष्टि का वर्णन नहीं है, आभा मंडल का वर्णन नहीं है। चलो ठीक है, पुष्प वृष्टि को छोड़ दो, और हो सकता है कल्पना करके अपन ये भी किसी अपेक्षा से मान ले कि कोई ऐसे तीर्थंकर होंगे जिनके यहाँ गाजे बाजे नहीं रहे होंगे, तो दुंदुभि और फिर वो वीणा बांसुरी वगैरह भी अगर अपन ना माने तो भी ठीक है, चलो एक अपेक्षा से। लेकिन तीर्थंकर का आभा मंडल ना हो और तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि ना हो तो फिर वो तीर्थंकर कैसे है? दिव्य ध्वनि होती है तब तो तीर्थ होता है उनका। तो फिर देखो, तर्क देना हो तो ऐसा तर्क दो जो कहीं से बाधित ना ठहरे। अब अगर आप ये कहोगे कि सब तीर्थंकरों के 8 प्रातिहार नहीं होते, पार्श्वनाथ भगवान के 8 प्रातिहार, तो कल्याण मंदिर स्तोत्र को वो भी मानते हैं, बोले कि पार्श्वनाथ भगवान के 8 प्रातिहार थे, आदिनाथ भगवान के 4 थे। आदिनाथ भगवान के अगर आप 4 मानेंगे तो फिर दिव्य ध्वनि का निषेध करना होगा, और दिव्य ध्वनि का अगर तीर्थंकर में निषेध हो जाएगा तब तो फिर जैन शासन का स्वरूप ही पलट जाएगा, फिर तो वो किसका शासन कहलाएगा? दिव्य ध्वनि ही तो जिन शासन है, दिव्य ध्वनि के अलावा क्या है फिर? उसी से तो सबको जिनवाणी मिलती है, उसका अभाव कैसे संभव है? इसलिए आप ये कह सकते हो कि उन आपके पाठ में 4 काव्य नहीं है, चलो इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं, वो ठीक है आपकी मान्यता है, लेकिन आप दिव्य ध्वनि का निषेध कैसे कर सकते हो? सेठिया जी नाम के एक विद्वान थे, उन्होंने ये चीज लिखी थी, तो फिर हमने ये उनके लिए प्रतिप्रश्न, हमने अपने लेख में ये लिखा था, पूरा चित्र जो है भगवान का ही है, थोड़ा छोटा है लेकिन आप देखिएगा, थोड़ा बड़ा हो सकता है ऐसे। ये दक्षिण के जिनालय में भगवान का चित्र है, नहीं दिख रहा है ना? उन्होंने पीछे अलग से लगाया छत्र, और वो पहले वाला जो चित्र था उसमें तो साथ में ही छत्र था, पहले वाला चित्र का पूरा बृहत रूप ये है, मठ मंदिर में अंदर की तरफ मूल नायक के दाहिने हाथ की तरफ अंदर साइड में है, ऐसे पूर्वाभिमुख प्रतिमा है, और ये बीच में जिनेंद्र भगवान है, और उनके आजू बाजू बड़ी सुंदर संरचना की है उन्होंने, और ये पीछे छत्र है डंडे के ऊपर। और ये छत्र घूमते भी हैं, छत्र का झूलना अशुभ है, अस्थिरता का सूचक है, तो वहां पर जो समाज होगी झूलते हुए छत्र पे, जहां भी भगवान के छत्र झूलते होंगे वहां की समाज का वर्चस्व नहीं रहेगा, और जहां पर अचल छत्र होंगे, हर राजधानी के किसी मंदिर में आपको अचल छत्र मिलेंगे, देखिएगा, चाहे वो मुंबई हो, चाहे उपराजधानी नागपुर हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे और कोई भी भोपाल हो, वहां पर आपको किसी न किसी मंदिर में अचल छत्र मिलेंगे, या तो वो मार्बल के छत्र होंगे या पाषाण के, या कोई भी ऐसे छत्र आपको अवश्य मिलेंगे जो हिल नहीं रहे हैं, झूल नहीं रहे हैं। छत्र शासन का प्रतीक है, ये तीनों लोक के नाथ है लिखा ना, अभी तो अपन ने पढ़ा श्लोक, तो तीनों लोक के नाथ है, वो छत्र अचल होगा तब तो नाथ होंगे, ऐसे झूलता रहेगा तो क्या संकेत है उसका? जैसे फटे हुए ध्वज का ये संकेत है कि समाज संपन्न नहीं हो सकती, अगर जिनालय का ध्वज फटा हुआ हो, जीर्ण शीर्ण हो, तो ये इस बात का सूचक है कि समाज में विपन्नता है, संपन्नता नहीं। और अगर वो ध्वज कलश से टकरा रहा हो, हवा में लहराता है ना ध्वज, वो अगर कलश से टकरा रहा हो तो समाज में टकराव रहता है। ये मंदिर का वास्तु अगर परफेक्ट हो तो समाज एकदम खुशहाल होती है। आज के तथाकथित मिथ्या वास्तु शास्त्रों की बात नहीं कर रहे हैं, जिन वास्तु शास्त्रों में मद्य मांस मदिरा का प्रयोग उल्लिखित है, उन कुशास्त्रों की बात नहीं कर रहे हैं। जो प्राचीन शिल्प विद्या जैसे जो वास्तुशास्त्र पूर्व काल के थे, धरसेन आचार्य द्वारा विरचित थे, उन वास्तुशास्त्रों में जो वर्णन आज लगभग अनुपलब्ध है वो, लेकिन वो जैन परंपरा से ज्ञान चला आ रहा है और प्रतिष्ठा शास्त्रों में उसका कुछ उल्लेख मिलता है, कुंद कुंद श्रावकाचार में, वसुनंदी श्रावकाचार में, वसु बिंदु प्रतिष्ठा पाठ में, वसुनंदी प्रतिष्ठा पाठ में और निमिचंद्र प्रतिष्ठा तिलक में, ऐसे ग्रंथों में कहीं कहीं कुछ इसका संकेत मिलता है। यहाँ तक के कि द्वार के आधार पर प्रतिमा की आकृति का नाप बताया जा सकता है कि अगर द्वार इतने अंगुल का है, इतने सूत का है, तो प्रतिमा कितनी बड़ी होगी, वो अनुपात भी निश्चित है। ये नहीं कि आपको सुविधा हो रही है, बड़ा दरवाजा बना लिया आपने ताकि अच्छे से आप वो कर लो अपनी अनुकूलता के अनुसार, तो उसके अनुसार नहीं चलता वहाँ पर। वहाँ पर प्रतिमा कितने अंगुल की है उसके आधार पर ये द्वार भी उतना ही होता है, गर्भालय भी उसी अनुपात से होता है। अभी कोई एक ऐसे शास्त्री हैं जिनको इसके बारे में जानकारियाँ है, तो एक बार उनको हिम्मत नगर के मंदिर में ले गए तो उन्होंने केवल द्वार देख करके बता दिया, क्योंकि उनको पता था कि ये प्राचीन विधि से बना हुआ मंदिर है, तो केवल द्वार देख करके उन्होंने कुछ नापा और उनने बता दिया कि वेदी इतनी बड़ी है, मूर्ति इतनी बड़ी है मंदिर में, अंदर गए बिना, और अंदर जाकर देखा तो बिल्कुल वही माप था। तो वास्तु कोई हंसी खेल नहीं है, और अभी जितने लोग वास्तुगिरी कर रहे हैं उनकी कोई प्रामाणिकता नहीं है। प्रामाणिकता हो तो एक श्लोक तो सुना दे, वो क्या लिखा है, कहां पर, कौन से वास्तुशास्त्र में, कौन से आचार्य ने क्या लिखा है, वो बता दो। नहीं तो श्रद्धालु लोग तो श्रद्धा से कुछ भी मानने को तैयार है, उससे थोड़ी काम चलता है। ये जैन शासन है, किसी का निज शासन नहीं है। तो ये तीन छत्र का वर्णन था, और इन तीन छत्रों में ये खूबियां होती है, और उसमें जो वो कल्याण मंदिर स्तोत्र में देखिए इसका वर्णन जो आता है, अपन विभिन्न ग्रंथों से, 5-6 ग्रंथों से ये प्रातिहार्यों का वर्णन पढ़ रहे हैं, इसलिए ये इतना, इसमें 4 चांद लग गए हैं समझ लो आप, तो 3 छत्र तो 3 चंद्रमा जैसे लगते हैं। अब कल्याण मंदिर स्तोत्र में देखिएगा क्या वर्णन है 3 छत्रों का। उद्योतितेषु भवता भुवनेषु नाथ तारान्वितो विधुरयं विहताधिकार मुक्ता कलाप कलितोल्लसितात् पत्र व्याजात्रिधा धृत तनुर्ध्रुवमभ्युपेतः। आपने तीनों जगत को अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित कर दिया, ये पार्श्वनाथ भगवान से कह रहे हैं कुमुदचंद आचार्य। तो जब तीनों जगत में आपका प्रकाश फैल गया, तो वो लिख रहे हैं कि चंद्रमा तो बेरोजगार हो गया, विहत अधिकार, प्रकाश फैलाने का जो उसका अधिकार था वो तो उसके पास से चला गया, छिन गया। तो अब क्या हुआ, तारान्वितो अयम विदु, तारागण के साथ यह चंद्रमा आपकी शरण में आ गया, और उसने त्रिधाधृत तनुर, आपने तीनों जगत को प्रकाशित किया, चंद्रमा तो यहीं प्रकाश फैला रहा था, तो उसने अपने तीन रूप बना लिए चंद्रमा ने, और जो तारागण थे वो अपने स्वामी को कैसे छोड़ सकते थे। चंद्रमा को तारापति भी बोलते हैं, तो वो तारागण, ये अलंकारिक वर्णन है, वो सारे तारागण जो थे वो चंद्रमा ने तो तीन रूप बना लिए तीन छत्र के, तो सारे तारा समूह उनकी उसकी किनारियों पर मोतियों के रूप में लटक गए। मुक्ता कलाप कलिसोल कलितोल लसितात पत्र। अब इसमें इतर संप्रदायों में ऊपर बड़ा छत्र होता है और नीचे छोटा छत्र होता है, लेकिन जैन परंपरा में अब वहां पर भी हो सकता है मतांतर हो, लेकिन कई स्थानों पर देखने मिलता है कि सबसे ऊपर बड़ा वाला छत्र, उससे नीचे उससे छोटा, और सबसे नीचे सबसे छोटा छत्र, ऐसा कई मंदिरों में देखने मिलता है अन्य मतों के। लेकिन जैन परंपरा में जो दृष्टांत आता है, आचार्यों ने जो उसका उदाहरण दिया, बोले मनुष्य की नासिका, नासिका जो रहती है ऊपर सक्रिय रहती है, मध्य में मध्यम होती है और नीचे विस्तृत होती है, बस इसी प्रकार ये छत्र में जो सबसे ऊपर वाला छत्र है वो छोटा होता है, उससे नीचे वाला उससे बड़ा होता है, सबसे नीचे वाला सबसे बड़ा होता है। और छत्र सफेद होते हैं, उसके डंडे में वैडूर्य मणि लगे होते हैं। अब वैडूर्य मणि को उपलक्षण मान करके आप अन्य रत्नों का भी उसमें समावेश कर सकते हैं, हीरे लगाए जा सकते हैं, माणिक्य लगाए जा सकते हैं, मूंगा मोती पन्ना पुखराज नीलम और भी जो जो श्रेष्ठतम रत्न हैं उनको छत्र के डंडे में लगाया जा सकता है। और फिर उसकी रचना ऐसी होती है कि ऐसे घुमाओ तो वो घूमता है, किसी भजन में एक पंक्ति आती है, कबहू सिर पर छत्र फिरावे कबहू हाल करे बेहाल। ये कर्मों की ऐसी अवस्था है कि कभी ये मनुष्य के सिर पर छत्र फिराता है और कभी हाल बेहाल कर देता है, राजा से रंक बना देता है। इसलिए जिन्होंने कर्मों पर विजय प्राप्त की है वही तीन लोक के नाथ है। तो इस तरह तीन छत्र प्रातिहार्य का वर्णन संपन्न होता है जैनम जेतुशासनम। अन्य ग्रंथों में भी वर्णन तो आया हुआ है, अपन ने दो तीन जगह से देख लिया है। जैनम जेतुशासनम शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में माँ अविलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा, बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख को।